दादाजी ने आज फिर अरमान सिंघानिया का बचपन का वो रूप देखा था, जिस वक्त अरमान सिंघानिया मेंटल हॉस्पिटल में ही खुद को बेहद टॉर्चर कर रहा था और उसके मुंह पर दर्द का एक निशान तक नहीं था। अब आगे फ्लैशबैक। एक 6 से 7 साल का बच्चा जिसने अपने आप को बुरी तरह से, जानवरों से भी ज्यादा बदतर तरीके से पीटा था, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी जिसे देखकर डॉक्टर नर्स पूरी तरह से कांप उठे थे। छोटा सा बच्चा इतना ज्यादा लहूलुहान होने के बाद भी बड़ा ही अजीब सा मुस्कुरा रहा था, ये बात सभी को डरा गई थी। आज कहीं ना कहीं दादाजी को अरमान की वो झलक दिखाई दी थी। भले ही अरमान ने अपनी जुबान से किसी को कुछ ना कहा हो, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था मानो पूरी की पूरी कहानी बयां कर रहा हो। अब दादाजी को भी आस्था के लिए डर लगने लगा था। हालांकि आस्था एक मासूम बच्ची थी, ये बात तो सबके सामने साबित भी हो चुकी थी, और वैसे भी दादाजी को तो कभी आस्था पर शक था ही नहीं, लेकिन अब वाकई उन्हें आस्था के लिए डर लग रहा था। दादाजी सोच रहे थे कि कहीं आस्था को अरमान की जिंदगी में लाकर उन्होंने कोई गलती तो नहीं की, अरमान की मोहब्बत में आस्था के साथ गलत तो ना कर बैठें, क्योंकि अरमान अपने जुनून में न जाने अब किस हद तक जाएगा। वेल, कितनी सारी उधेड़बुनों के साथ दादाजी सोचते रहे, फिर जाकर उन्होंने डिसीजन लिया कि वे अरमान को प्यार से समझाएंगे और उसके पास्ट से उभरने के लिए उसे आगे बढ़ाने के लिए कहेंगे, और साफ साफ इस बात का यकीन दिलाएंगे कि आस्था उससे बहुत प्यार करती है, तो वो बिल्कुल भी किसी भी चीज को लेकर परेशान ना हो। कहीं ना कहीं दादाजी इस वक्त सोच रहे थे और जल्दी ही अपनी कुछ मेडिसिन्स लेकर वे भी गहरी नींद में सो गए थे। वेल, पूरे सिंघानिया मेंशन में एक सन्नाटा सा पसर चुका था, लेकिन कोई था जो अभी भी जाग रहा था। वो कोई और नहीं, वो थी राधिका, जो सिंघानिया आने के बाद काफी ज्यादा खुश थी। जैसे जैसे उसकी सगाई का फंक्शन नजदीक आ रहा था, साथ साथ सुमित का नाम कि उसको हल्दी लगी, तो राधिका खुश थी। लेकिन आज राधिका की आंखों में कुछ अजीब सा था, क्योंकि सुमित ने उसे एक बार भी ढंग से और प्यार से बात नहीं की थी। सुमित के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि सुमित सिर्फ और सिर्फ दबाव में आकर उससे शादी कर रहा था। लेकिन राधिका ये नहीं चाहती थी। राधिका चाहती थी कि सुमित पूरे दिल से उसे प्यार करे, इस तरह से किसी के दबाव में आकर वो उससे शादी ना करे। लेकिन फिलहाल रात के उस पहर राधिका की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। वहीं सुमित, जो आकाश, आहान, ध्रुव से मीटिंग करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा था, जब वो राधिका के कमरे के पास से गुजरा तो उसे राधिका की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। एक पल को सुमित रुका था, एक पल को उसका दिल किया कि वो अंदर जाकर राधिका से पूछे कि इस तरह से इस रात को यूं रोने का क्या कारण है, लेकिन दरवाजे के पास जाकर वो रुक गया और अंदर नहीं गया। वहीं राधिका रोए जा रही थी। अब सुमित ने सोचा कि एक बार जाकर देख ही लेता हूं, आखिरकार इस तरह से रात के वक्त रोने का क्या मतलब है, अगर किसी ने देख लिया तो बेकार में सवाल खड़े हो जाएंगे। तो ये सोचते हुए सुमित ने फटाक से दरवाजा खोल दिया था और तुरंत राधिका के सामने जा पहुंचा था। सुमित को अपने सामने देखकर राधिका चौंक गई, लेकिन अगले ही पल सुमित ने राधिका की भी आंखों को देखकर उसकी बाजू को कसकर पकड़ा था और डांटते हुए कहा, ये रात को इस वक्त रोने का क्या मतलब है? हाँ, तुम क्या चाहती हो? पूरा का पूरा सिंघानिया मेंशन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए और तुमसे रात के वक्त इस तरह से रोने की वजह पूछे? वो पब्लिसिटी हासिल करना चाहती हो? यह सबकी हमदर्दी चाहती हो? हाँ, देखो इस बेचारी लड़की पर कितने ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, जबकि किसी को नहीं पता कि इस मासूम और भोले चेहरे के पीछे कितना खतरनाक चेहरा छुपा हुआ है। कितनी ज्यादा शातिर चाल चली है तुमने सिर्फ और सिर्फ मुझे पाने के लिए, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और हाँ मिस राधिका अग्रवाल, एक और बात कान खोलकर सुन लो। भले ही तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी बद से भी ज्यादा बदतर बना दूंगा। तुम खुद ब खुद मुझे इस रिश्ते से निकलने की भीख मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूं मिस राधिका अग्रवाल, मैं तुम्हें आजाद किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, तुम्हें तब तक मौत भी नहीं आ सकेगी
जब तक मैं नहीं चाहूंगा। ये कहकर सुमित ने राधिका को बेड पर धक्का दे दिया था और जल्दी ही उसे कमरे से बाहर निकल गया था। राधिका, जो पहले ही सुमित की बेरुखी को लेकर रो रही थी, अब तो उसका रोना और भी ज्यादा बढ़ चुका था और अब उसने अपने हाथों को अपने मुंह पर रख लिया था और जोरों से रोना शुरू कर दिया था। और रोती हुई वो कब सो गई उसे एहसास नहीं रहा। जल्दी ही अगली सुबह हो चुकी थी। अबीर राठौर के मेंशन में इस वक्त चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि अबीर सिंह राठौर ठीक 6 बजे अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया करता था, लेकिन आज अबीर सिंह राठौर अभी तक अपने कमरे से बाहर नहीं आया था। अजीत बेचैनी से अबीर के कमरे के बाहर चक्कर लगा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। क्या वो अब अबीर के बारे में उसके पिता को इन्फॉर्म कर दे? क्योंकि उसके पिता की पसंदीदा जमीन जब से उसके हाथ से छीनी गई थी, तब से उसने इस शहर को पूरी तरह से त्याग दिया था और जाकर विदेश में बस गया था। लेकिन अब अबीर की ऐसी हालत देखने के बाद अजीत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, कि वो इसके बारे में किसे बताए। अबीर की माँ बहुत पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी। जब वो बहुत छोटा था वो इस दुनिया में नहीं थी। अबीर के पिता ने ही उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। लेकिन अब यहां मसला अलग था। अबीर सिंह राठौर को जिंदगी में पहली बार मोहब्बत हुई थी, लेकिन वो मोहब्बत भी पूरी तरह से उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द दे गई थी। अजीत को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, इसके बारे में वो किससे बताए। लेकिन रात से जब से सिंघानिया मेंशन से अबीर सिंह राठौर लौटा था, तब से उसने खुद को कमरे में बंद किया हुआ था और ना किसी से बात की थी और ना ही किसी से किसी तरह का कोई ताल्लुक रखा था। अब जब अजीत को वेट करते हुए 7 से 8 बज गए, तब उसका सब्र जवाब दे गया। इसीलिए अजीत ने जैसे ही दरवाजा खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तभी अबीर ने दरवाजा खोल दिया था और अबीर को एकदम सूट बूट में तैयार देखकर अजीत हैरान हो गया। उसे तो लगा था कि नया नया दिल टूटा है, शायद अबीर सिंह राठौर अभी मातम मना रहा होगा, उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो रही होगी। लेकिन यहां तो अबीर सिंह राठौर एकदम से बिल्कुल तैयार होकर अजीत की आंखों के सामने था। अब अजीत हैरानी से अबीर की ओर देखने लगा था। उसे समझ नहीं आया कि वो अपने बॉस से पूछे ना पूछे कि वो ठीक है या नहीं है। तब हमेशा की तरह अबीर सिंह राठौर एकदम जोरदार लहजे में बोलता है, मुंह क्या देख रहे हो, आज का क्या शेड्यूल है, जल्दी से मुझे बताओ और किसके साथ मीटिंग वगैरह है, चेक करो। ऐसा बोलकर अबीर सीधा जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया था और ब्रेकफास्ट करने लगा था। अबीर को इतना नॉर्मल बर्ताव करता देखकर अजीत की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अजीत पूरी तरह से कसमकश का शिकार हो चुका था कि वो अब आखिरकार अबीर से क्या बात करे क्या ना करे, क्या उसके बॉस का दिमाग तो नहीं चल गया। जो बॉस एक लड़की के लिए पूरी तरह से पागल था, पूरे शहर को उसने अपने सर पर उठा रखा था, हर जगह वो पागलों की तरह उस लड़की को ढूंढ रहा था। अब जब से उसे यह पता चला है कि वो लड़की अरमान सिंघानिया की बीवी है, तब से उसका बॉस अजीब सा बर्ताव कर रहा है।
कहीं ना कहीं अजीत तो अब परेशान सा हो गया था। वहीं अबीर की आवाज उसे सुनाई देती है, मुंह क्या देख रहे हो, फटाफट से मुझे मीटिंग के शेड्यूल दो, मेरे पास टाइम नहीं है, उसके बाद मुझे अपनी बटरफ्लाई को देखने भी जाना है। अब जैसे ही अबीर ने ये कहा, अजीत की तो आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं। वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उसका बॉस इस तरह से, ये जानते हुए भी कि आस्था अरमान सिंघानिया की बीवी है, उससे मिलने की बात कर रहा था। अजीत को अब एक बार फिर से अपने गले पर तलवार लटकती नजर आने लगी थी। वो सोचने लगा था कि उसका बॉस अपनी बटरफ्लाई के चक्कर में खुद तो मरेगा ही और शायद हमें भी मरवा देगा। वहीं दूसरी ओर अरमान ने 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाई थीं। वो पूरी रात आस्था को उल्लू की तरह घूरता रहा था। वही आस्था जैसे ही अगली सुबह सोकर उठी तो उसकी नज़र जैसे ही अरमान पर पड़ी तो एकदम से वो डर गई, क्योंकि पूरी रात ना सोने की वजह से, ऊपर से अरमान बीमार था, उसकी वजह से उसकी आंखें एकदम लाल सुर्ख हुई पड़ी थीं। कोई भी नॉर्मल इंसान उस वक्त अरमान को देख लेता तो पक्का हार्ट अटैक से मर जाता। अब आस्था डरते डरते उठी और अरमान की ओर देखकर पूछती है, अरमान जी, ये आपको क्या हुआ है, आप इस तरह से हमें क्यों घूर रहे हैं, क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं ना कहीं आस्था की ये बोलते हुए उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। तभी अरमान ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद किया और अगले ही पल आस्था की ओर देखकर कहता है, कुछ नहीं, मैं अभी सोकर उठा हूं, मेरी तबीयत ठीक है, शायद इसीलिए, तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, तैयार हो जाओ। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा कि तुम जाओ जाकर तैयार हो जाओ, आस्था कन्फ्यूजन से पूछती है, तैयार हो जाओ, लेकिन क्या हम कहीं जा रहे हैं क्या? तब अरमान ने बताया, हाँ, आप मेरे साथ ऑफिस चल रही हैं। अब जैसे ही अरमान ने ये बम ब्लास्ट किया, आस्था हैरान हो गई, क्योंकि अरमान की तो तबीयत वैसे ही पहले से खराब थी और वो उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाने की बात कर रहा था, जबकि आस्था ने तो अरमान से बोल दिया था कि जब तक उनकी शादी के फंक्शन कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक अरमान ऑफिस नहीं जाएंगे, लेकिन अब तो अरमान आस्था को सीधे सीधे कह रहा था कि वो जाकर तैयार हो जाए, वो उसके साथ ऑफिस जाएगी। अब आस्था थोड़ा सा कन्फ्यूजन उसकी ओर देखकर बोलती है, लेकिन अरमान जी आपकी तबीयत तो अभी ठीक भी नहीं। बस आस्था ने इतना ही बोला था, तभी अरमान ने आस्था की ओर देखकर बोला, वो मेरा मामला है, मैं हैंडल कर लूँगा। आप जाइए, जाकर फटाफट से तैयार हो जाइए। आपके कपड़े मैंने ऑलरेडी निकालकर बाथरूम में रख दिए हैं, आप जाकर नहा लीजिए। ऐसे बोलकर अरमान दूसरी तरफ देखने लगता है। वही आस्था तो अब कुछ समझ में नहीं आया कि लो करे तो करे क्या। ऐसी हालत में अरमान ऑफिस जाना चाहता था, ऊपर से उसकी तबीयत भी खराब थी। लेकिन आस्था सोच रही थी कि आखिरकार क्या कहकर इस राक्षस कुमार को मना करे। उसका ये प्रिय पतिदेव तो उसे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। हालांकि अरमान ऑलरेडी पहले ही ये बात वेरी मच क्लियर कर चुका था कि वो आस्था को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा, 24 घंटे उसे अपने आसपास रखेगा। लेकिन आस्था को तो नया नया अरमान से प्यार हुआ था, तो उसे तो अरमान की सारी बातें अच्छी लग रही थी। लेकिन अब अचानक से इतना बीमार होने के बावजूद ऑफिस के लिए कहना आस्था को काफी हैरान कर गया था। लेकिन फिलहाल अरमान की बात मानकर आस्था जल्दी फ्रेश होकर तैयार हो चुकी थी, और अरमान ने आस्था के लिए आज एक पिंक कलर का बड़ा ही खूबसूरत सा अनारकली सूट निकाला था। उस पर हल्का हल्का गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वर्क था जो बेहद खूबसूरत था। आस्था की खूबसूरती उसमें और ज्यादा खिलकर दिखाई दे रही थी। आस्था बड़ी ही प्यारी लग रही थी, और जब तक आस्था आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को कोम करती रही थी, अरमान उसे देखता रहा था। अरमान का यूं अजीब अजीब सी नजरों से आस्था को देखना उसे हैरान भी कर रहा था। आस्था जल्दी ही तैयार हो गई थी, उसने हल्का सा अपनी आंखों में काजल अप्लाई किया था। उसके खूबसूरत लाल होठों को किसी भी तरह की कोई लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं थी। आस्था तैयार होने के बाद अरमान की ओर मुस्कुराकर देखकर बोलती है, अब आप हमें खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? अगर आप हमें लेकर कहीं चल रहे हैं तो आप भी तैयार हो जाइए ना। आस्था ने बड़े ही आराम से हल्के फुल्के शब्दों में अरमान को आंसर किया था, क्योंकि अरमान का इस तरह से बार बार उसे घूरना उसे काफी ज्यादा अंदर ही अंदर डरा रहा था। तो इसीलिए वो अरमान के सामने जितना हो सकता था उतना ज्यादा नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही थी। तभी अरमान उठते हुए बोला, आप यहीं मेरा वेट कीजिए, मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ। ऐसा बोलकर अरमान जल्दी ही चेंज करने के लिए बाथरूम में चला गया था। वही आस्था ने अरमान के जाने के बाद गहरी गहरी और लंबी लंबी सांस लेना शुरू कर दिया था, और वो सोचने लगी थी कि आखिरकार आज अरमान जी का उसे यूं देखना उसे अजीब सा क्यों लग रहा था। वही दूसरी ओर पूरा का पूरा सिंघानिया परिवार, जितने भी लोग इस वक्त सिंघानिया मेंशन में मौजूद थे, सभी के सभी टेबल पर अरमान और आस्था का इंतजार कर रहे थे। वहीं प्रियंका और सीमा इस वक्त दोनों एक साथ अलग बैठी हुई थीं। दुनिया भर का खाना, तमाम तरह की डिशेस, अलग अलग तरह की वैरायटी का खाना इस वक्त वहां मौजूद था।